कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र तीन हुए हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाई है, उनका म्यूजियम में चित्र होना चाहिए। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए, तो चैतन्य चित्र बने या जड़ चित्र बने, दुनिया में आवाज किससे फैलेगा? चैतन्य चित्र से फैलेगा। जो आदि में सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाले वो आदि ब्रह्मा हुआ, और फिर ब्रह्मा अकेला नहीं होता है, प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। जिसकी मूर्तियां बनती हैं, जो सुनने सुनाने वाला भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला ब्रह्मा है, उसकी मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, उसकी पूजा नहीं होती है। भारतवर्ष में उसकी मूर्ति बनती है जो आदि में देवता बना, आदि ब्रह्मा तो ठीक है, क्योंकि प्रजापिता तब कहा जाता है जब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुने। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? मुरली में बोला। तो प्रजापिता बनने के लिए क्या बनना पड़े? ब्राह्मण। और ब्राह्मण किसे कहा जाए? ब्रह्मा मुख की औलाद हो। तो कौन से मुख से प्रजापिता ने सुना? कोई मुख होगा ना जिसके मुख से वो साक्षात्कारों की बात सुनी। तो जो माता निमित्त बनी वो ही गौमुख के रूप में आज भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। गंगा कहां से निकली? गौमुख से निकली। परंतु भक्ति मार्ग में वो गौमुख पत्थर का बनाया हुआ है, माने वो गौ पत्थर बुद्धि है। चैतन्य बुद्धि जब बनती है तो कामधेनु गौया कही जाती है, जिसके शरीर से 33 करोड़ देवताओं को दिखाया जाता है। और
जैसे कि बीच वाले भाई को परिचय देते हैं और उसने स्वीकार नहीं किया, मान लीजिए स्वीकार नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, उसने
स्वीकार नहीं किया,
तो बाबा की सेवा मतलब क्या निष्फल हो गया? इसमें कुछ
जो पंपलेट या पर्चा है छपाया हुआ वो भी एक प्रकार का लिटरेचर है, और लिटरेचर के बारे में बाबा का डायरेक्शन है कि बिना समझाए कोई को लिटरेचर नहीं देना चाहिए, कुछ न कुछ समझाओ। मुरली सीधी सीधी कौन समझेगा? पहले तो ये पक्का निश्चय कराना पड़े कि बाप ही बाप बनता है, टीचर बनता है, सदगुरु बनता है, माता बनता है। माता के रूप में ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान के ऊपर ब्राह्मणों को विश्वास ही नहीं है। दीदी दादी दादाओं के ऊपर विश्वास है, उनकी बातें मानेंगे। जो ब्रह्मा के मुख से बोली हुई मुरली है उसको नहीं सुनना चाहते, तो जिसको अश्रद्धा है उसको सुनाने की जरूरत क्या है? पहले तो श्रद्धा विश्वास बैठाना है, बाप का परिचय दो, पहला पहला ये काम, तो आगे वो मुरली भी सुनेगा। और
बाबा अलीगढ़ से हम तीन युवक है ना, भट्टी करके आए थे, तो तीन युगल में बाबा आश्रम पे हम आते जाते रहते हैं, एक युगल को तो धक्का लगा दिया
आश्रम से,
आश्रम से एक भाई को तो धक्का लगा दिया
हाँ।
और यह दो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो दीदी है ना जैसे मुरली वगैरह जो बनाती है उसमें टोंट ज्यादा कसती है, तो इच्छा नहीं करती वहाँ मुरली वगैरह सुनने की।
टोंट चिपक जाता है क्या? गाली चिपक जाती है क्या? कोई ने ग्लानी कर दी वो चिपक गई क्या? कोई हमारी ग्लानी करता है तो समझ जाना चाहिए कि हम अभी लक्ष्मी नारायण जैसे नहीं बने हैं। दुनिया में शास्त्रों में या हिस्ट्री में कहीं भी लक्ष्मी नारायण की ग्लानी क्यों नहीं हुई? खास करके नारायण की ग्लानी नहीं है और सांप की ग्लानी है। इससे क्या साबित होता है? ग्लानी करने वाले हमको सुधारने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं? इसलिए कबीरदास ने भी लिखा है, निंदक नियरे डाकिए, जो हमारी निंदा करे। बाबा ने भी कहा, निंदा हमारी जो करे सो हमारा क्या है? मित्र हमारा। छोड़ के भाग जाओ तो कैसे काम चलेगा?
हैं? जाते रहे पीके में जाते रहे, कोई बात नहीं।
जब तक मना न करे तब तक जाते रहो, मना कर दे तो उनकी उनका उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर।
बात से जिस लिकेश भाई है
हाँ।
तो इनको तो वो थोड़ा दूर दूर कहते थोर थोर, और मेरे को कहते तुम आते रहो।
हाँ, पैसा वैसा देते हो? भोग वगैरह लगवा देते हो?
काम में
बाबा
मुझे एक बार प्रश्न करना जरा, कि मेरे तो है ना बीके वालों को पैसा है, इसकी मैं ब्याज वगैरह देता रहता हूँ अक्सर करके, तो दीदी कहती है कि भले ही मुझे महीने के पैसे ना दो लेकिन ब्याज के देते रहो, तो इसलिए। और वो कहती है कि मेरे आते रहो आते रहो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ही नहीं। बाकी अब बाबा ना अब मेरे को इच्छा नहीं करती पैसे वैसे देने के लिए,
लेकिन इच्छा नहीं है फिर भी देते रहते हैं। हाँ जी, एक गाड़ी चलेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो पहली पहली ट्रेन जहां से भी निकली, पहली पहली ट्रेन वो तो निकल गई। अब वो चाहे दिल्ली से निकली हो ट्रेन, चाहे बंबई से निकली हो, चाहे जालंधर से निकली हो, अमृतसर से निकली हो, कलकत्ते से निकली हो, पहली ट्रेन जो सिंध हैदराबाद जा रही थी वो निकल गई। उसके बाद दूसरी ट्रेन में जो चढ़े वो सब काट डाले गए।
जो आज में माउंट आबू पहुंचेंगे वहां तपस्या करके संपूर्ण जो संपूर्ण बनेंगे, वो फिर वहां पे फिर वो हो गया ना परमधाम, हो गया ना हमारी माउंट आबू।
परमधाम बनाएंगे तब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा।
बनाएंगे तो परमधाम हो गया ना।
हाँ हाँ, तो वहां पहुंच करके तपस्या करेंगे तभी बनेगा, या हथेली पे हम जम जाएगा? हाँ जी, कुछ ऐसे निकलेंगे जिन्हें अपने घर बार से, देह के पदार्थों से, अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के घर से उतना मोह नहीं होगा, तो धड़ाक से बेच बाच के कहाँ पहुँच जाएंगे?
फिर हमारी स्वर्ग तो दिल्ली में बनेंगे ना बाबा, फिर स्वर्ग जो हमारी बनेगी वो तो दिल्ली में बनेंगे ना।
हाँ हाँ, तो दिल्ली वाली को भी तो बुलाने के लिए बोला है ना, दिल्ली में स्वर्ग बनाने वाली कौन है? विजयमाला का आवाहन करो। हाँ, तो आवाहन करने के लिए बोला ना।
लेकिन बाबा वो जो आत्मा वहाँ पे हो गए परमधाम में माउंट आबू में, वो फिर दिल्ली कैसे पहुँचेंगे? तब तक तो सारे विनाश हो जाएगा ना।
पहले आत्माएं परमधाम जाएंगी या पहले सुखधाम में आ जाएंगी? परमधाम में तो सबको जाना पड़े, एक भी ऐसा नहीं है, जो परम धाम में बीज रूप स्टेज न धारण करे, परम धाम जाने के बाद ही कोई तुरंत आ जाएंगे सुखधाम में, कोई पवित्र नहीं बनेंगे तब तक पुरुषार्थ करना पड़े।
बाबा वहां से संपूर्ण पद उन्होंने प्राप्त करके परम धाम चले गए, तो उनका शरीर तो वहां दब गया ना बर्फ में।
कहां बर्फ में, बर्फ की बात अलग, देह के पुरुषार्थ की बात अलग। वो बर्फ में दबने वाली बात तब की है जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा।
कोई वो लोग वहां पुरुषार्थ करके वापिस के दिल्ली आ जाएंगे,
कहां से? माउंट आबू से वो ही वापस आ जाएंगे जो रुद्रमाला के मण के पवित्र बनेंगे और पवित्र बन करके विजयमाला में ऐड कर लिए जाएंगे, सब नहीं आ जाएंगे।
मारकाट जो शुरू हो जाएगा वो क्या रुक जाएंगे?
मारकाट जो भी शुरू हो जाएगा वो रुक जाएगा।
पहले ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद तो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे ना, तो छिट जाएगा, तो वो जो आत्मा वहां से वापस आएंगे तब के सब रुक जाएंगे।
बाबा ने कहा आगे चल के हेलीकॉप्टर खरीदेंगे।
नहीं बोला,
नहीं बोला, मुरली में तो बोला है जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। मुरली में क्या बोला? जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय, क्योंकि बाप ऊपर आया हुआ है या नीचे आया हुआ? जब नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करें? ऊपर याद करने में ज्यादा मेहनत है या नीचे आए हुए में याद करने में ज्यादा मेहनत है? ऊपर याद करने में मेहनत है, और नीचे आया हुआ उसको तो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, संपर्क संसर्ग में आ रहे हैं, तो याद करना कौन सा सहज होगा? हाँ जी
बाबा, कंचन कायक इसी जन्म में और ये कंचन आत्मा इसी जन्म में कैसे हुई है, समझ में नहीं बैठता है।
कंचन काया इसी जन्म में तब बनेगी जब पहले मन बुद्धि को कंचन बनावेंगे। क्या? जिनकी मन बुद्धि कंचन बनेगी उनकी निरोगी काया बनेगी, वो भी तब जब बर्फ में दब जावेंगे। बर्फ में कोई भी चीज होती है, अगर सड़ा हुआ आलू है, आधा सड़ गया और बर्फ में दाब दिया तो सड़ा हुआ हिस्सा तो पानी बह करके बन करके बह जाएगा, और जो अच्छा हिस्सा है वो सुरक्षित रह जाएगा। तो ऐसे ही ये पांच तत्वों की जो दुनिया है, ये पांच तत्व तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? है तमो प्रधान। पहले पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे या पहले पांच तत्वों को धारण करने वाली आत्मा सतो प्रधान बनेगी? आत्मा सतो प्रधान पहले बनती है। जब आत्माएं सब सतो प्रधान बन जाती है तो इस तमो प्रधान जो सृष्टि है उसका विनाश हो जाता है। जो तत्व तो जहां से 5000 वर्ष शुरू पहले शुरू हुआ था उसको उमड़ घुमड़ करके वहीं पहुंचना पड़े, अणु अणु को वहां पहुंचना पड़े। ऐसे नहीं, आत्माओं का ही साइकिल है, अणु अणु का साइकिल है। जो अणु जहां से चक्कर लगाते हुए 5000 वर्ष के बाद जहां चक्कर लगा लगा के जहां से आया था वहीं पहुंचेगा। जैसे आत्माएं जब इस सृष्टि पर आई थी तो पवित्र आई थी या पवित्र आई थी? पवित्र आई थी। तो जब पहुंचेंगी तो पवित्र बनकर के पहुंचेंगी या अपवित्र पहुंच जाएंगी? पवित्र बनकर के पहुंचेंगी।
भारत और महाभारत दोनों एक है अलग अलग?
नहीं नहीं, एक है भारत। जो भारत शब्द है वो व्यक्ति के लिए भी आया है, और व्यक्ति भी एक माता के रूप में है जिसका गायन है भारत माता। महाभारत माता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सिर्फ भारत माता। लेकिन भारत माता है तो विधवा है या सधवा है? है सधवा है। विधवा माताओं की तो अपने यहां मान्यता ही नहीं है। तो जो सधवा माता है उसके पीछे कोई भारत पिता भी है, परंतु माता जब तक आगे कदम न बढ़ाए तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। भारत स्वर्ग भूमि नहीं बन सकता, वैकुंठ नहीं बन सकता। इसलिए भारत माता का ज्यादा गायन है, वो स्थापना करने वाली है। भारत पिता विनाशकारी है या स्थापनाकारी है? है क्या गायन है? कल्पांतकारी कहा जाता है। तो जो कल्पांतकारी है उसका उतना गायन नहीं है, भारत माता का गायन है।
बाबा एक बेसिक में हमारे साथ एक मतलब लेडीज क्लास अटेंड कर रही थी और उन्होंने मतलब क्वारी दी, वो शादी जुदा नहीं थी और उन्होंने अब शादी कर ली है। उन्होंने उस पीरियड में बोला था अगली बार जब हम जन्म लेंगे तो हम इंसान का जन्म यानी पुरुष का जन्म मिलेगा मुझे। अब पहले वो ज्ञान में चल रही थी, अब भी ज्ञान में चल रही है, उन्होंने शादी कर ली है, क्या ये संभव हो सकता है क्या?
कोई कुछ भी सुना देगा आप विश्वास करने लगेंगे।
बाबा ऐसा है कि मैंने ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र देखा इनको मैंने समझाया कि देखो इनमें कोई फर्क तो है नहीं, जैसा जिसका कर्म है जैसा जिसका पुरुषार्थ है उसी हिसाब के उसको आने वाले समय में जन्म मिल सकता है। बोलती नहीं मेरे को तो अब की बार में मनुष्य का ही मिलेगा। जब उसने अब शादी कर ली ज्ञान में चलते हुए तो उसको असंभव है कि संभव है?
पुरुष का जन्म लेना या स्त्री का जन्म लेना ये शादी से कनेक्टेड नहीं है कि जिसने शादी कर ली उसको स्त्री का ही जन्म मिलेगा या पुरुष का ही जन्म मिलेगा, ये कोई बात नहीं है। शरीर छोड़ने के समय स्मृति की बात है, जिस स्वरूप को स्मृति करेंगे वैसा चोला मिलेगा।
बाबा ये ज्ञान में चलने के बाद तो शादी नहीं करनी चाहिए थी
हाँ तो
उन्होंने 12 साल बेसिक में चली हो
हाँ?
अब 12 साल के बाद में उन्होंने शादी कर ली
ठीक है,
अब वो कहती है कि अब भी हम पुरुष का ही जन्म लेंगे तो ये कैसे संभव हो जाए बाबा?
अगर पुरुष वृत्ति के संस्कार हैं जिससे शादी की उसको अपने अंडर में रखती है, कंट्रोल करती है, उसकी बात नहीं चलने देती, अपनी बात चलाती है, उसके ऊपर पूरी सवारी करती है, तो संस्कार पुरुष के हैं या स्त्री के? पुरुष के हैं तो पुरुष का ही जन्म मिलेगा, पुरुष के संस्कार प्रबल हैं।
लेकिन बाबा ज्ञान में चलने से पहले अज्ञान में तो शादी हर एक इंसान की होती है भारत में
है?
ज्ञान में अगर चलने से पहले अगर कोई शादी करता है वो तो चलो ठीक बात है, अगर वो ज्ञान में चलने के बाद शादी करता है तो फिर वो ज्ञान फिर किस बात करा गया था?
तो प्रजावरण में चला गया
तो फिर वो उसको कैसे पुरुषार्थ, फिर वो उसको लेडीज का लेडीज ही रहेगी ना फिर? वो
लेडी अच्छा पुरुषार्थ नहीं करती है क्या?
नहीं तो ज्ञान में चलने के बाद फिर वो
आप लेडीज को नीचा क्यों समझते हैं?
ज्ञान में चलने के बाद बाबा फिर वो शादी कर रही है।
ज्ञान में चलने के बाद कोई शादी कर ले और अच्छा पुरुषार्थ करे तो अच्छा पुरुषार्थ करने वाला क्या लक्ष्मी नहीं बन सकता?
लक्ष्मी जैसा पद तो उन्होंने पहले खो दिया ना।
वो शादी करने के बाद की बात, आप ज्ञान में चलने की बात कर रहे हैं। ज्ञान में चलने की बात जो कर रहे हैं, कोई स्त्री है और वो ज्ञान में चल रही है और ज्ञान में चलने के बावजूद भी अगर शादी कर ले तो वो प्रजापद में चली जाएगी। प्रजापद स्त्री का भी होता है और प्रजापद पुरुष का भी होता है। हाँ
बाबा, बीके वालों को ज्ञान दिया, ज्ञान उनको काफी अच्छा लगा, मुरली समझ में आने लगी और कम से कम 15 दिन हमने सेवा की। सेवा के बाद में जब उन्होंने बोला कि हम 7 अक्टूबर को और भट्टी करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले बृहस्पति का वो आया दिन और उन्होंने बाबा से योग लगाया, तो जब हम दूसरे दिन गए तो बोले कि भाई हमको, हम जब योग में बैठे तो हमें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ और वो हमको ब्रह्मधाम ले गए और बोले कि माँ भी तुम्हारे साथ है, बाप भी तुम्हारे साथ है और बाप हमेशा तुम्हारे अंग संग है, क्यों बुद्धि को भटकाते हो। तो बाबा हमसे ये बोले कि भाई हमें तो बाप भी मिल गया और माँ भी मिल गई, अब हम अपने आप को क्यों भटकाएं। तो तुम्हारा ज्ञान यहीं तक सीमित था, तो फिर उन्होंने सुनना बंद कर दिया, जाने के लिए मना कर दिया। तो क्या बाद में वो आएंगे?
सारी दुनिया को सच्चाई की तरफ ही जाना पड़ेगा, उनकी बात क्या है, वो तो हमारे ज्यादा नजदीक है। चंद्रवंशी तो हैं, चंद्रमा की गोद में पले हैं ना, वो कहां जाएंगे, उनको तो नाक रगड़ रगड़ के आना पड़ेगा।
सारी रीत यहीं से शुरू होती है,
है?
सारी रीत
रसम
रिवाज जो भी
है
यहीं से शुरू होती है।
चलो हाँ,
तो फिर पहले तो सास आनी चाहिए,
है?
सास आएगी तो ही तो विजय माला को लाएगी।
ठीक है,
रुद्रमाला को डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन किसको दिया है, ये विजय माला का आवाहन करने के लिए किसको बोला है, रुद्रमाला को बोला है। और रुद्रमाला में मुख्य मणके कौन है, हा? माता पिता, ये दोनों मुख्य मणके हैं। तो दोनों मुख्य मणके जब मिलकर के कार्य करेंगे, आवाहन करेंगे, तो गांठ जोड़ेगी और गांठ जोड़ के जो पुरुषार्थ किया जाएगा वो सफल होगा, या बिना गांठ जोड़े पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। हाँ वो तो है आशा, लेकिन एक नियम और बाबा ने बताया है, राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी, तो बड़ी भारी मुझ हो गई है। कृष्ण तो अपने को सूर्यवंशी समझता है, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राधा के यहां नीच कुल में कैसे जावे, वो तो झुक नहीं सकते, तो किसको आना पड़े, राधा को ही आना पड़े। अब वो चाहे राधा हो या राधा की सास हो, और
वो कौन सा हार है,
लकड़ी का बना हुआ?
हाँ, लकड़ी का जो स्टैंड बनता है, उस स्टैंड के ऊपर शंकर जी का एक हाथ रखा हुआ है, तो वो जो लकड़ी है स्टैंड, वो लक्कड़ बुद्धि की यादगार है या चैतन्य बुद्धि की यादगार है? लक्कड़ बुद्धि की यादगार है, वो ज्ञान उतना बुद्धि में बैठता नहीं है, परंतु आधार लिया हुआ है, उसका आधार लिए बगैर टिक नहीं सकता वो भुजा, भुजा माने सहयोगी। और
बाबा, राजा दुष्यंत होता है,
हाँ
राजा दुष्यंत होता है, गायन तो सब सर्गों में होता ही है,
है?
तो जो कुमिला होती है,
है?
शकुंतला, जो शकुंतला होती है,
हाँ
वो ऋषि के यहाँ पलती है।
हाँ जी,
ऋषि के यहाँ पलने से भी वो दुष्यंत के साथ चली जाती है,
साथ चली नहीं जाती है, उसके प्यार में फंस जाती है। हाँ,
और फिर भी वो उसे 12 साल के लिए उसका क्यों त्याग करता है?
उसको एक अंगूठी दी थी, क्या शकुंतला को राजा दुष्यंत ने, जो दुनिया के दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत है, उसने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी, वो अंगूठी उसने खोई दी, वो अंगूठी मछली ने खाई ली। क्या सागर में कौन से जीव जंतु ज्यादा होते हैं? मछलियां ज्यादा होती हैं, और भांति भांति की मछलियां होती हैं। मनुष्य जो मांस खाते हैं, वो कौन सा प्राणी है जिसका सबसे जास्ती मांस दुनिया में खाया जाता है? मछलियां ही हैं, वो सागर में सबसे जास्ती रहती हैं। ये है ज्ञान सागर। क्या इस ज्ञान सागर में भी ढेर की ढेर मछलियां हैं? उन मछलियों में से कोई ने वो अंगूठी हप कर ली, अब फिर स्मृति गायब हो गई। और
मनु के लिए बोलते हैं कि उन्होंने एक नाव तैयार करी थी, मनु के लिए बोलते हैं कि मनु जो है उनको शंका हुआ कि सारा संसार जल प्रलय में डूब जाएगा, तो उन्होंने एक नाव तैयार की और उसमें जो है कहते हैं कि अच्छे अच्छे बीज रख लिए और जो भी अच्छे अच्छे मड़की आत्माएं, तो उनको जो है उन्होंने बचाया उस नाव से। वो नाव क्या है?
मुरली में कहीं चंद्रकांत वेदांत जहाज का नाम सुना है? है? सुना है कि नहीं? सुना है। और जहाज कहो, नवैया कहो, बात एक ही है। उस जहाज में, उस नवैया में 108 दुनिया की बीज रूप आत्माएं सुरक्षित रख दी जाती है, जिनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होती है। और कहते भी हैं शंकर चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर बूढ़ सकल संसार। जो आधार लेता है वो बच जाता है और बाकी सारा संसार डूब जाता है। और
बुद्धि की हजार नियामत बताए बुद्धि की हजार नियामत
बुद्धि की हजार नियामत नहीं बुद्धि ही हजार नियामत है। इसका मतलब मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसको जो बुद्धि मिलती है, कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है, अरबपति के घर में जन्म लेता है, वो अरब और करोड़ हजार नियामत नहीं है। करोड़पति के घर में जन्म ले और बुद्धि से भ्रष्ट हो तो करोड़ रुपया भी क्या करेगा? बर्बाद कर देगा।
परम बाबा बुद्ध महाराज के मन के में ही जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनके हैं सृष्टि के
हैं,
बुद्ध महाराज के जो मनके बनते हैं
हाँ,
इनके अंदर ही बुद्धि की सृष्टि की जो अलग नियम
उसमें भी भांति भांति के हैं,
भांति भांति के हैं, तो फिर उनकी पहचान कैसे हो? मतलब
कोई की बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर मोटा छिलका चढ़ जाता है और कोई के ऊपर बहुत हल्का छिलका होता है। हे अभिमंत, जो मोटा छिलका होता है उसे ज्यादा डंडों की जरूरत है या हल्के छिलकों को डंडों की जरूरत है या पानी की जरूरत है? हल्का छिलका वो ज्ञान जल से अपने आप साफ हो जाता है और जो मोटा छिलका होता है वो डंडे पर डंडे धर्मराज के पड़ते रहते हैं, लास्ट में वो भी शुद्ध बीज बन जाते हैं।
बुद्धि की जो बुद्धि जो है वो भी तो धीरे धीरे सत्व से और कलयुग के आते आते बुद्धि की क्षमता कम होती जाती है ना
है?
बुद्धि की जो क्षमता है
क्या है
शिक्षण नियमन जिसे करते हैं बुद्धि के नियमन तो कम होती जाएगी ना सत्व से कलयुग के अंत आते आते
ये कुछ भी हो जन्म लेने के बाद जो बुद्धि है वो संग के रंग में आते आते नीचे गिरती है या ऊपर उठती है नीचे गिरती है आखिरी जन्म में आकर के कोई की बुद्धि कब नीचे गिरती है और कोई की बुद्धि ज्यादा नीचे गिरती है कोई की बुद्धि बहुत पतित तो हो जाती है फिर भी उसने ऐसे कर्म किए हुए हैं जो भगवान का सहारा उसे मिल जाता है दुनिया में ऐसे बहुत से सन्यासी हैं जो पवित्र बुद्धि वाले हैं उनकी वाचा उनकी कर्मणा उनका व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन भगवान उनको नहीं मिलता
संगम ही तो सत्य बुद्धि पारस बुद्धि बनती है नंबर वार बनेगी
नंबर वार कैसे नंबर वार सबकी कैसे बनेगी पारस तो उसी को कहा जाता है जिसके नजदीक आने मात्र से ही पारस बन जाए परिवर्तन हो जाए
उसे बुद्धि की नियम की पारस कहेंगे
तो हरेक की पारस बुद्धि नहीं बनती पारसनाथ नहीं है तो नंबर वार लेकिन लिमिटेड है सबकी बुद्धि पारस नहीं बनती
ऐसा क्या क्या अष्टदेव की बुद्धि ऐसा अष्टदेव की बनती है ऐसा काल अष्टदेवों की पारस बुद्धि बनती है इसके अलावा जो और जो बारह हैं हर धर्म के
हाँ जी
उनकी भी बनती होगी पारस बुद्धि स्वार्थ की माला है
तो वो अपने जैसा ही बनावेंगे इस्लाम धर्म का अगर मणका होगा तो संघ का रंग लगा के इस्लाम धर्म का बनाएगा कन्वर्ट होने वाला या देवता धर्म का पक्का बना देगा है इस्लाम धर्म का बनाएगा तो पारस बुद्धि कैसे कैसे कहेंगे नहीं उनको अपने तरीके की बुद्धि मिलती है
बाबा ये सतयुग के बाद में जैसे ये द्वापर ना आके त्रेता आया है सतयुग के बाद में द्वापर नहीं आया त्रेता आया है और इधर शास्त्रों में गाया हुआ है कि सत्य एक है,
है?
सत्य एक है,
है?
तो एक के बाद गिनती दो आनी चाहिए ना बाबा द्वापर नहीं आया त्रेता क्यों आया ये
क्योंकि 13 जन्म होते हैं वहां में 13 जन्म होते हैं इसलिए त्रेता नाम दिया गया
बाबा फिर सतयुग में तो 8 होते हैं वहां 8 के नाम से क्यों नहीं दिया गया जन्म के हिसाब से
क्या 8 होते
हैं जन्म 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 के हिसाब से युग है
जन्म सतयुग में
जन्म के हिसाब से युग का नाम क्यों नहीं दिया गया
जन्म 8 होते हैं उसमें गिनती कला कम होती है या जास्ती होती है
तो कलयुग में तो और भी ज्यादा होती है फिर
गिनती कला ज्यादा होती है
42 जन्म होते हैं जन्म के हिसाब से फिर युग का नाम होना चाहिए अगर वायुग का नाम जन्म के हिसाब से है तो
नहीं नहीं जहाँ आज कर्म करो और कल उसका फल मिल जाए जल्दी फल मिल जाए ऐसा कलयुग में होता है इसलिए कलयुग नाम पड़ गया सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं होता इच्छा मात्र अविद्या अच्छी बात है या खराब बात है अच्छी बात है तो अच्छा सतयुग में ज्यादा होगा या कलयुग में ज्यादा होगा इच्छा मात्र अविद्या की जो स्टेज है वो द्वापर में ज्यादा होगी या कलयुग में ज्यादा होगी द्वापर में ज्यादा होनी चाहिए कलयुग में इच्छाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं और जितनी तीव्र इच्छाएं होती हैं उतनी जल्दी फलित होती हैं इसलिए दूसरे जन्म में ही मोस्टली उसका फल मिल जाता है इसलिए कलयुग नाम दिया और कलयुग का बिगड़ा हुआ रूप भी कलयुग हो गया। कलह के लिए ज्यादा होता है इसलिए नाम भी कलयुग है।
और कृष्ण को कृष्ण रख के बक्से जी ले जाते हैं, कृष्ण को जन्म होता है तो रख के ले जाते हैं बक्से जी। तो सारे
दरवाजे अपने खुलते हैं। तो ये कृष्ण का जो पाठ है ना, ये किसका है और बक्से जी कौन है? वसुदेव, वसु माने धन संपत्ति और देव माने देने वाला। ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन है? नहीं, वासुदेव तो बच्चे का नाम है, कृष्ण का नाम वासुदेव रखा गया, एक मात्रा बढ़ जाती है। वसुदेव उसके बाप का नाम है, वासुदेव बच्चे का नाम, ब्रह्मा बाप का नाम है, ब्राह्मण बच्चे का नाम है, एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। इसलिए वासुदेव जो है वो नहीं, वसुदेव। वसुदेव कौन हुआ? ज्ञान धन देने वाला कौन है? शिव बाबा, तो वो तो शिव बाबा हुआ। और सर के ऊपर सूप रखा गया, सूप क्या करता है? सार सार को गहरे ठोका दे उड़ाए। सूप क्या करता है? सार ले लेता है और ठोका उड़ाए देता है। ज्ञान में भी ऐसी कोई आत्मा है जो ज्ञान में सार सार की बातों को उठाई देती है और बाकी फालतू बातों को उड़ा देती, वो कौन आत्मा है? है कौन है? जगदम्बा सार को ले लेती है, तोते को उड़ा देती है, है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा हो गई सूप और उसमें बैठाया गया कृष्ण बच्चे को। कृष्ण बच्चे माने ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा की सोल राम की बुद्धि रूपी टोकरी में कहो, सूप में कहो, उसमें डाली गई। और जो विषय वैतरणी नदी है, काली नदी, यमुना नदी, उसको क्रॉस करता है। तो ये दुनिया क्या है? विषय वैतरणी काली नदी है, उसको राम वाली आत्मा क्रॉस कर रही है। उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण वाली आत्मा विराजमान है। ये एक रूपक दिखाया है शास्त्रों में, बाकी शास्त्रकार और स्थूल बात समझ ली, सारा ज्ञान का घोटाला हो गया।
बाबा कि सिर्फ बाप को याद करना है और दूसरी तरफ बोला कि बाबा को याद करना है, इसका क्या मतलब?
आप कुछ और भूल गए। बाबा ने बोला बाप को याद करो, एक बाप दूसरा न कोई, मामेकम याद करो, बोला ना। और फिर ये बोला सुखधाम को याद करो, फिर बोला शांति धाम को याद करो। तो एक को याद करे, ये डायरेक्शन दिया, माम एकम याद करो, फिर सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो। तो ये तीन तीन की याद करें या एक की याद करें? वास्तव में ये समझने की बुद्धि का फेर है। जो बाप है वो बाप ऐसा पार्ट बजाता है कि जो आत्माएं उसके कनेक्शन में आती हैं सुखधाम में जाने का पार्ट बजाने वाली, वो बाप के आने से ही गदगद हो जाती है, जैसे कि स्वर्ग मिल गया हो, सब कुछ भूल जाती है। तो सुखदाम हो गया कि नहीं बाप, शांतिधाम, रहने के स्थान को शांतिधाम कहा गया है। सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आकर के कहाँ रहता है? कोई मुकर्रर रथ है उसमें रहता है, तो जिस मुकर्रर रथ में रहता है वो घर हो गया कि नहीं सुप्रीम सोल बाप का? तो शांतिधाम भी हो गया, इसलिए शांति देवा का गायन है। किसका गायन है? शांति देवा, तो वो शांतिधाम भी है, सुखधाम भी है और हमारा बाप भी, अलग अलग नहीं है।
अलीगढ़ से जो दूसरी बट्टी गई थी उसमें युगल जोड़ा जो गया था एक जो अभी बट्टी सो रहा तो वो बोलते हैं कि हमें बात तो किससे नहीं है लेकिन हमें सकती है तो जाना ही जाना,
कोई बड़ी बात नहीं। बाप के ऊपर जो निश्चय करते हैं, निश्चय करने के बाद पुरुषार्थ करते हैं पवित्रता का, तो जो जो पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, सेवा करते हैं, वो राजाई घराने में आ जाएंगे। अगर बाप के ऊपर से निश्चय हो पड़ जाता है प्रजावर्ग में चले जाएंगे, क्या बड़ी बात होगी? तो गलत तो नहीं कह रहे कि हम सत्युग में तो जरूर जावेंगे, भले हम बाप को नहीं मानते, निश्चय पत्र लिख दिया फिर भी नहीं मानते, तो जितने समय तक उन्होंने माना उतनी शूटिंग उनकी हो गई।
मिले न फूल तो कांटों से रोटी कर ले।
हाँ जी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसका अर्थ पूछ रहे हैं। एक है रुद्रमाला और एक है विजय माला। विजय माला है पवित्र रहने वाली आत्माओं की माला, जो जन्म जन्मांतर भी पवित्र रही है भारत की रानियां, और रुद्रमाला है राजाओं की माला, जो जन्म जन्मांतर अपवित्र रहे, सैकड़ों रानियां रखी, तो पतित बने या पावन बने? पतित बने। तो जो पतित हैं वो कांटे हैं, या जो पावन जन्म जन्मांतर रहे वो कांटे हैं? पतित रहने वाले रुद्रमाला के मन के कांटे हो गए और विजयमाला के मन के फूल हो गए। राम बाप में शिव बाप आता है, तो राम बाप वाली आत्मा यज्ञ के आज में ही बेसिक से बहिष्कृत कर दी गई या रही, अलग हो गई, तो बाप ने उनको बाण दे दिए, बुद्धरूपी तरकस दे दिया, जाओ शिकार करो मारो खाओ। क्या? जितना ज्यादा शिकार करोगे, जितना ज्यादा बाण चलाओगे, उतनी उतनी आत्माएं टूट टूट करके तुम्हारे जखीरे में आ जाएगी। बाण मारना, बाण चलाना, इससे थोड़ा दुख होता है या नहीं होता है आत्माओं को? खास करके बेसिक बाणों को दुख होता है या नहीं होता है? दुख तो होता है। तो ये दुखदाई कांटे हैं राम और राम संप्रदाय रुद्रमाला के मण के, ये सुखदाई है, है?
है?
क्यों, जब आपको एडवांस मिला था तो शुरुआत में आपने क्या अनुभव किया?
अच्छा लगा था, बढ़िया लगा था, हमें तो फूल लगा था
जब वहां से छोड़ के आए थे। अरे बेसिक में थे कि नहीं कभी? हाँ जब बेसिक में थे, तो जब बेसिक में थे और वहां से छोड़ करके इधर आते हैं, मरते हैं, तो मरते समय दुख नहीं होता है?
मर के अच्छी है बाबा, यहाँ पर आके हम मरे
भले एक जगह से मरते हैं तब दूसरी जगह जिंदा होते हैं जाकर के, तो मरना तो होता है एक परिवार से, तो जिस परिवार से मरे उस परिवार को दुख होगा या नहीं होगा? उस परिवार को दुख होता है। तो ये है दुखदाई। रुद्रमाला के मन के क्या है, सारे बड़े बड़े कांटे हैं। अब राम वाली आत्मा को विजय माला से फूल मिल जाएंगे क्या? मिल जाते हैं? आप ढूंढने जाते हैं तो मिल जाते हैं?
नहीं मिलते,
नहीं मिलते। तो मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। जो दीपावली मनाई जाती है वो पहले मनाई जाती है या धनतेरस पहले मनाई जाती है? तो ज्ञान धन जो है वो पहले इकट्ठा करना पड़े। ज्ञान धन जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, ये धनतेरस नहीं मनाएंगे, तब तक आत्मा का दीपक जगने वाला नहीं है। है आवाज नहीं आ रही
है
ये माता बीच में बोल रही है। हाँ जी है, सूरजमुखी का फूल उसमें विशेषता ये होती है कि जैसे जैसे सूर्य घूमता जाता है वो फूल भी घूमता जाता है। माना जो सूर्यवंशी बच्चे होते हैं वो ज्ञान सूर्य का जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है जिस दिशा में भी मुड़ेगा वो सूर्यवंशी बच्चे भी उसी दिशा में मुड़ते जाएंगे। क्या उनके लिए वही सत्य है, दूसरा कोई दुनिया का सत्य नहीं है?
और यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में गीता माता और राधा बच्ची के नाम यही था कि दूसरा कुछ था?
ये तो समझाने के लिए बताया है। असली नाम रूप और फोटो तो दीदी दादियों के पास बताया है, इन बच्चियों के पास उनके फोटो भी रखे हैं। हाँ जी
बाबा कहते, बाबा कहते हैं जो बाबा आए थे तो चार भाई ने उसको सहयोग दिया था, उन्हें चार भाइयों ने, फिर एक माता उनके साथ निकली थी, पर वो फिर एक दरवाजे में तीन लड़कियां लगाई गई, तीन आत्मा निकालती लगाई गई, तीन आत्मा तीन क्यों।
घर जो है वो घरवाली को घर कहा जाता है या ईंटों की दीवार को घर कहा जाता है? घरवाली ही घर होती है क्या? तो जो चार कुमार जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर दिखाए गए हैं वो चारों कुमार चार धर्मों के बीज हैं। उनमें से जो चौथा धर्म है क्रिश्चियन धर्म, उसका जो बीज है वो 76 में ऐसे संकल्प चलाता है कि हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जा। क्या भगवान आता है तो गृहस्थ बनाएगा या सन्यासी रह करके काम करेगा? वो गृहस्थ बनाता है, लेकिन जो चौथा है वो क्या संकल्प करता है? हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, और वो गिर भी जाता है। तो जो भगवान के बने बनाए घर को गिराने का निमित्त बन गया संगम युग में, उनके द्वारा जो धर्म स्थापन किया जाता है, उस धर्म में जो मंदिर बनाए जाते हैं, उन मंदिरों का नाम भी गिरजाघर पड़ जाता है, क्योंकि संकल्प ही ऐसे चलाए। इसलिए उसको माता नहीं दिखाई गई, वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं है। सबसे जास्ती शादियां कौन से धर्म में होती है? क्रिश्चियन धर्म में। मुसलमानों में फिर भी लिमिट है, 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस में कोई लिमिट नहीं। एक घर बिगाड़ो, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, 10-20 बनाओ, 50 बनाओ।
और राधे कृष्ण का जन्म स्कूल में सत्यों में लक्ष्मी नारायण निमित्त बनते होंगे,
है?
राधे कृष्ण का जो जन्म होता है सत्युग में, सत्युग की आदि में लक्ष्मी नारायण निमित्त बनते हैं जन्म देने के। और ये राधे कृष्ण जो होते हैं वो युवक मतलब ऐसे ट्विंस के रूप में होते हैं,
है?
ट्विंस के रूप में पैदा होते
हैं, हाँ,
भाई बहन के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन यज्ञ की आदि में जो माता पिता जो लक्ष्मी नारायण जो है सिर्फ किस बच्चा को जन्म देते हैं, सिर्फ किस बच्चा को जन्म देते हैं, राधे को जन्म नहीं देते, राधे तो बाद में आती, सचिति बाद में आती।
जो सत्युग के गायन है शास्त्रों में या संगम युग के गायन? शास्त्रों में जो गायन है वो सत्युग के गायन है या संगम युग के गायन? संगम के गायन है। तो संगम में जो रुद्रमाला और विजयमाला बनती है, उनके जो मुखिया आत्माएं होती हैं, वो रुद्रमाला का मुखिया संगमयुगी कृष्ण है, और विजयमाला की मुखिया चंद्रवंशी राधा है। इसलिए शास्त्रों में राधा को 3-4 साल बड़ा दिखाया है, माने वो आत्मा पहले आती है। पहले सोमनाथ मंदिर बनता है या पहले मूर्ति स्थापन की जाती है? हैं? पहले घर बनाया जाता है, मंदिर माने घर। तो 66 में जैसे ही सोमनाथ मंदिर बनाया जाता है, वैसे ही वो सोमनाथ ही रूपी गृहिणी कहो घर कहो वो ज्ञान में आ जाता है। उसके 3-4 साल के बाद फिर वो संगम की कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भी बेसिक नॉलेज में आ जाती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में राधा को बड़ा दिखाया है और कृष्ण को छोटा दिखाया है। बाकी सत्युग की कोई गायन पूजन यादगार नहीं है, ये तो बाबा ने हमको बताया। एक प्रश्न आया है, रामायण को बाबा ने मुरली में उपन्यास क्यों कहा? इसलिए कहा, और जो शास्त्र हैं जो दुनिया में पढ़े जाते हैं वो सब द्वापर युग में बने, और जो रामायण शास्त्र पढ़ा जाता है वो कौन से युग में बना? कलयुग में बना। तमो प्रधान युग कौन सा है? कलयुग। और उसमें जो रचना रची जाएगी वो तमो प्रधान होगी या सतो प्रधान होगी? वो भी तमो प्रधान। ये भी बोला है कि जो फिल्म है और जो उपन्यास है वो बुद्धि रूपी आत्मा को सबसे जास्ती पतित बनाती है। विकार में जाने से भी उतना पतित नहीं बनता जितना उपन्यास पढ़कर के बुद्धि मलिन बनती है और आज की फिल्में देखने से बुद्धि पतित बनती है। रामायण भी एक ऐसा शास्त्र है जिसका उदाहरण मुरलियों में बहुत कम दिया गया। भागवत के उदाहरण बहुत दिए, गीता के, महाभारत के, देवासुर संग्राम की बातें बहुत बताई गई, लेकिन रामायण का आधा पीछा नहीं मिलता है। उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है ज्ञान के आधार पर, इसलिए बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बल मुरली में यह भी बोला है भागवत रामायण और महाभारत से तुम ज्ञान को टैली कर सकते हो, डायरेक्शन नहीं दिया करो क्या, अगर तुम्हें बुद्धि की विशालता अपनी प्रदर्शित करनी है तो इन इन शास्त्रों से ज्ञान को टैली कर सकते हो। तो बाप ने जो मुरली में सार की बातें बताई है, शास्त्रों का सार ब्रह्मा के मुख से आता है ना, तो उन सार की बातों पर मनन चिंतन मंथन करना अच्छा है या तमो प्रधान युग में लिखे हुए शास्त्र पर मनन चिंतन करना अच्छा है? मुरलियों में जो शास्त्रों की बातें आई है, चाहे वो महाभारत की आते हो, देवासुर संग्राम की हो, चाहे भागवत की हो, चाहे गीता की हो, उन पर मनन चिंतन मंथन करना अच्छा है। रामायण के विस्तार में अगर बुद्धि को ले जाएंगे तो जैसे तामसी चीज का मनन चिंतन मंथन कर लिए।
दादा लेखराज को युधिष्ठिर कहा गया है, यदि नहीं
दादा लेखराज को युधिष्ठिर नहीं कहा गया,
लेखराज की आत्मा
नहीं, हाँ वो आत्मा जब संपन्न पाठ बजाती है, ज्ञान धारण कर लेती है पूरा, भगवान बाप को साकार में पहचान लेती है, युद्ध के लिए खड़ी हो जाती है, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध में स्थिर बनी रहती है, राम वाली आत्मा की अंत तक सहयोगी बन जाती है। तो राम वाले शरीर के द्वारा ही वो युधिष्ठिर कही जाती है, युद्ध में स्थिर रहने वाली, नहीं तो उनका तो शरीर 869 में ही छूट गया था, स्थिर कहां रहे? स्थिर तो आत्मा तब बने जब ज्ञान की गहराई बुद्धि में बैठे।
शास्त्रों में दिखाते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो सशरीर स्वर्ग में जाते हैं और सारे उनके भाई का शरीर गल जाता है, किसी की कमी के हाथ में गलता हो,
क्योंकि और जो है पांडव वो कोई तो बौद्ध धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है, कोई संन्यास धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है, और कोई ऐसे हैं जो सिख धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है, कोई ऐसे हैं जो चंद्रवंश से त्रेता युग से ज्यादा कनेक्टेड है, जो युद्ध में दुनिया का पूरा खलासा हो जाए, पांच तत्वों की तामसी दुनिया भी खलास हो, तब तक स्थिर बना रहे।
राम वाली आत्मा ही है,
राम वाली आत्मा के अंदर कौन बैठा है? वाली आत्मा भी तो बैठी है, तो वो युद्ध स्थिर भी है।
उनका उंगली कही जाता है, सर्व है एक आदि उंगली निकल गई।
हाँ
जी, सत्य ने बोला था अपने जीवन में
कोई सहयोगी है, जो सहयोगी की ऐसी दशा हो जाती
बाबा ने तो बोले बोला है कि मोर पवित्र होता है।
हाँ।
लेकिन वो तो गंदगी खाता है, लेकिन वो तो गंदगी खाता है।
दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें सूर्यवंशी आत्माओं को छोड़ दो 9 लाख को, बाकी अंत में कीड़े मकोड़े रह जाएंगे या श्रेष्ठ आत्माएं कही जाएंगी, बाकी सब कीड़े मकोड़े और जानवर हैं। वो है हद का मोल, जो हद के कीड़े मकोड़े खाता है, और ये है बेहद का मयूर, जिसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। इसका डांस बहुत अच्छा होता है। भक्ति मार्ग में ये दिखाया गया है वहां जो हंडे के ऊपर हंडे रखे जाते हैं, उनमें जो चावल डाले जाते हैं तो 4 हिस्से हो जाते हैं। जैसे अमरनाथ में शिवलिंग बनाया जाता था तो अपने आप बनता था या कोई युक्ति थी जिससे बनाया जाता था? मुरली में बोला है कि बाबा अचानक सवेरे 4 बजे चले गए मंदिर में, देखा तो वहां कोई ब्राह्मण बच्चा बैठा हुआ बर्फ का लिंग बनाए रहा, और आज वो बात सच्ची भी साबित हो गई। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में बहुत ढेर सारी बनावटी बातें बनाई हुई है, जैसे कंपनी में द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है कि वहां यज्ञ कुंड रचा गया, उसमें से द्रौपदी का जन्म हुआ, तो क्या यज्ञ कुंड से अग्नि से द्रौपदी का जन्म हुआ था? है? वो जो कुंड बनाया हुआ है कंपिल में, वो बनावटी बनाया है या असली है? क्यों बैठे हैं? टाइम हो गया, उनको घर में डांट पड़ेगी। चलो